रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें।
आज है 16 फरवरी दिन मंगलवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें रोहित जोशी का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। परमाणु संधि पर ईरान के तेवर तीखे, दी यूएन की निगरानी समिति के दौरे को रोकने की धमकी। 9/11 की तर्ज पर कैपिटल हमले की भी होगी जांच, गठित किया जाएगा एक स्वतंत्र जांच आयोग। नाइजीरिया की ओकोंजो इवियाला बनी डब्ल्यूटीओ की पहली महिला और अफ्रीकी मूल की प्रमुख। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में रोहित जोशी के साथ।
आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें।
आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते में शामिल देशों को चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते के भीतर इन देशों ने ईरान से सहयोग नहीं किया तो वह अपने परमाणु कार्यक्रमों की जांच का दायरा कम कर देगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से विवाद बरकरार है और इसे लेकर 2015 में एक समझौता किया गया था जिससे 2018 में अमेरिका ने अपने हाथ वापस खींच लिए थे। एक रिपोर्ट सुनिए हमारे सहयोगी शादाब हसन खान से।
ईरान ने परमाणु संधि को लेकर अपने तेवर तीखे कर दिए हैं। उसने 21 फरवरी की समय सीमा तय करते हुए कहा है कि अगर इस दिन तक 2015 के परमाणु करार में शामिल सभी पक्षों ने संधि की शर्तों का पालन नहीं किया तो वह संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी समिति के अगले सप्ताह होने वाले निरीक्षण को रोक देगा। ईरान का यह फैसला अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए भी समझौते पर दोबारा आने की चुनौती के रूप में सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खातिब जादेह ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी समिति को निरीक्षण ही नहीं करने दिया जाएगा, ये सभी कदम वापस लिए जा सकते हैं अगर सभी संबंधित पक्ष अपने किए हुए समझौते का पालन करें। 2018 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। इसके बाद ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अमेरिका का आरोप था कि ईरान समझौते का उल्लंघन कर परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, हालांकि ईरान ने इससे इनकार किया था। उसके बाद से ईरान ने भी धीरे धीरे इस करार की प्रतिबद्धताओं से खुद को किनारे कर लिया था। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर आ गया। माना जाता है कि ईरान ने 20% तक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेह की हत्या के बाद वहां की संसद से दिसंबर में एक कानून पास होने के बाद ईरान के और भी ज़्यादा संवर्धन करने की आशंका जताई जा रही है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि वे ट्रंप के उस निर्णय को वापस लेते हुए फिर से समझौते की ओर लौटेंगे। ईरान की ताज़ा घोषणा से अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। ईरान ने गेंद संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के पाले में डाल दी है।
रिपोर्ट सुना रहे थे शादाब हसन खान। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं रोहित जोशी। अब रुख अगली खबर का। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पश्चिमी इलाके में कांगो नदी में एक बोट के डूबने से कम 60 लोगों की मौत हो गई है। कांगो में मानवीय सहायता मंत्री स्टीव मिम्बिकाई ने बताया है कि यह दुर्घटना माई नडोम्बे प्रांत में लोंगोला इकोटी नाम के गांव के पास घटी है। बताया जा रहा है कि इस नाव में कम से कम 700 लोग सवार थे, जिनमें से अब तक 300 लोगों को जिंदा बचाया जा सका है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। इधर अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी को यूएस कैपिटॉल में जो हमला किया था उसकी जांच के लिए अमेरिकी कांग्रेस एक स्वतंत्र आयोग का गठन करेगी। अमेरिकी सांसदों को भेजे गए एक पत्र में उन्होंने कहा है कि यह आयोग न्यूयॉर्क और पेंटागन में 9/11 को हुए हमले की जांच के लिए गठित किए गए आयोग की तर्ज पर ही होगा और इस हमले की स्वतंत्र जांच करेगा। उन्होंने लिखा है कि हमें यह सच पता चलना चाहिए कि आखिर यह सब हुआ कैसे। हालांकि अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस मामले के लिए चलाए गए महाभियोग में उन्हें बरी कर दिया गया है। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने अपने समर्थकों को एक भड़काऊ भाषण देकर उन्हें कैपिटॉल हिल में हमला करने के लिए प्रेरित किया था। सत्तारूढ़ डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन सांसद अब भी कैपिटॉल हॉल में हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। सैन्य सत्ता हर रोज सड़कों पर उतर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों के दमन की कोशिशें कर रही है। इसी क्रम में दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवाओं को बाधित रखा गया है ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए। ब्रिटेन की एक मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स ने बताया है कि तकरीबन पूरी तरह इंटरनेट शटडाउन है और 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से यह 4थी बार किया गया इंटरनेट शटडाउन है। इससे पहले सैन्य अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को सेना के काम में बाधा डालने के चलते 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और कठोर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। म्यांमार के शहरों में प्रदर्शनों को रोकने के लिए सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी उतारी गई हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से सैन्य अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा न करें और आन सान सू ची समेत दूसरे नेताओं को रिहा कर लोकतंत्र को फिर से बहाल करें। इधर नाइजीरिया की 2 बार वित्त मंत्री रह चुकी नवोजी ओकुंजो इवियाला सोमवार को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला प्रमुख बनी। उन पर महामारी के बीच संरक्षणवाद के आरोपों से घिरे इस वैश्विक संगठन पर भरोसा बहाल करने की चुनौती होगी। 66 साल की इवियाला WTO की पहली अफ्रीकी प्रमुख भी होंगी। सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में संगठन के 164 सदस्यों ने आपसी सहमति से उनके नाम पर मुहर लगाई। बतौर महानिदेशक इवियाला का 4 साल का कार्यकाल 1 मार्च से शुरू होगा। 31 अगस्त 2025 में कार्यकाल समाप्त होने पर वह इसके विस्तार के लिए आवेदन कर सकेंगी। उन्होंने 25 साल तक विश्व बैंक में अर्थशास्त्री के रूप में सेवाएं दी हैं। इसके बाद वे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की अध्यक्ष पद पर भी रह चुकी हैं। WTO में चीन और पश्चिमी देशों के बीच जारी टकराव से निपटना इवियाला के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। पश्चिमी देशों का आरोप है कि 2001 में संगठन में चीन के प्रवेश से बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी आई है। अब चलते चलते एक और खबर पर नजर। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नेटो अपनी सेनाओं को तब तक अफगानिस्तान से वापस नहीं लाएगा जब तक कि सही वक्त नहीं आ जाता। उन्होंने कहा है कि इससे पहले तालिबान को अमेरिका के साथ 2020 में हुए शांति समझौते की शर्तों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक व्यवहार में लाना होगा। स्टोल्टनबर्ग का यह बयान नेटो के 30 सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की होने वाली एक बैठक से पहले आया है, जिसमें नेटो की सेनाओं के डिप्लॉयमेंट को लेकर चर्चा होनी है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद संभालने के बाद यह पहला मौका है जब नेटो की उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तालिबान के साथ अफगानिस्तान से नेटो सेनाओं को वापस लेने के लिए एक समझौता किया था। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का शीर्ष एजेंडा इसी मसले पर पुनर्विचार करने का है। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार।
रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा आने दो, थोड़ी आवाजें।